ध्यान दीजिएगा, ये 8 पद से लेकर 16 पद तक कई बातें हैं इसमें। कम से कम एक एक पद को एक एक संदेश के रूप में प्रचार कर सकते हैं, उतना गहरे बात है। मैं बहुत सरल रीति से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मेहरबानी से बाद में बात करिए, नहीं तो एक दिन इसी के ऊपर मैं बाइबल स्टडी भी करूंगा यहूदा के ऊपर, ताकि हम और बातों को गहराई से जान सकें। आइए हम लोग 8 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ेंगे।
सूक्ष्मदर्शी उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते और स्वर्गदूतों की निंदा करते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब मूसा के शव के विषय में शैतान से वाद विवाद किया तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का दुसाहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं समझते उनकी निंदा करते हैं, और अविवेकी पशुओं की भांति जिन बातों को स्वभाव ही से जानते हैं उन्हीं के द्वारा नाश हो जाते हैं। उन्हें धिक्कार है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम की सी भूल कर बैठे और कोरह के समान विद्रोह करके नाश हो गए। ये मनुष्य समुद्र तल की छिपी चट्टान हैं जो तुम्हारे प्रीति भोजों में तुम्हारे साथ निधड़क खाते पीते हैं, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं। निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के फलहीन वृक्ष हैं जो 2 बार सूख चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। समुद्र की प्रचंड लहरें हैं जो फेन के समान अपनी लज्जा उछालते हैं, डवाडोल तारे हैं जिनके लिए घोर अंधकार सदा के लिए ठहराया गया है। हनोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में नबूवत की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तहीन पापियों ने उनके विरोध में कही हैं दोषी ठहराए। ये कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों की चापलूसी करने वाले लोग हैं।
1 पद से लेकर 7 पद तक यहूदा ने अगर 1-2 पद से ले 1 पद में जिनको परमेश्वर ने बुलाया है ना, परमेश्वर का साथ प्रिय है, मतलब परमेश्वर के साथ साथ ये लोग चल रहे हैं और परमेश्वर इनको आखिरी तक सुरक्षित भी रखेगा, आखिरी तक जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। और फिर 3 पद 3 पद से यहूदा लिखते हैं कि मेरा इच्छा तो उद्धार के बारे में लिखने के लिए, परंतु मैं ये सही समझाऊँ कि क्या है, आप विश्वास में बढ़ते जाएं, उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहें। क्यों ये बात है, ये बार बार दोहरा रही है, क्योंकि कुछ अधर्मी लोग छुपके से ऐसा कलीसिया में, नहीं तो अलग अलग जो कलीसिया चल रहा है उसमें छुपके से आ घुसे हैं, मतलब हमारा मध्य में है अधर्मी लोग, जो झूठे शिक्षक लोग। इसलिए यहूदा इन लोग को याद दिला रहा है, आप उस विश्वास के लिए यत्नपूर्वक संघर्ष करते रहो। 5 पद में फिर ये कह रहे हैं कि आप लोग तो ये बात तो सुन चुके हैं, ये सारे बात यहूदा विश्वासी लोग को लिख रहा है, ये बात तो आप लोग को मालूम है पहले से, फिर भी मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ। क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो जब पिछले रविवार को हम लोग ने देखा मिस्र से इसराइलों को निकाल कर लेके आया, कुछ लोग को बचाया, जो लोग विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने नाश कर दिया। वैसे ही स्वर्गदूत अपना निजी स्थान को स्वर्गदूत ने छोड़ के परमेश्वर का विरुद्ध काम किया, उसको भी अनंत दंड, उस भीषण का दंड दिन के लिए उन्होंने रखा है, पर एक दिन न्याय करेगा। वैसे ही सदोम और अमोरा, उन लोग भी परमेश्वर के पीछे नहीं चला, अपना इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर ने नाश कर दिया। सो ये बात यहूदा याद दिलाना चाह रहा उस समय उस विश्वासियों के लिए, और इवन आज भी बहुत गलत शिक्षाएं बढ़ रहे हैं, बहुत अधर्मी लोग, वे लोग क्या करते हैं, 2 नाव में पैर रख के चलते हैं, ये लोग इधर भी हैं उधर भी हैं। जब हम किसी को देखते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु के पीछे तो चल रहा हूँ, बट सचमुच में वो लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं, ऐसा लोगों को चेतावनी देने के लिए यहूदा ने इस पत्री को लिखा है। अब इन लोग को कैसे पहचानेंगे हम लोग, आप लोग को मालूम होगा ना, पिछले हफ्ते दिल्ली में कितना मारपीट हुआ था, आप लोग सुना कि नहीं? खबर तो सुना होगा ना, दिल्ली में बहुत मारपीट हुआ था। लोग मतलब जब वे लोग आके एक दूसरे को मारते हैं, ऐसा तो नहीं कि ये लोग पहले से बता के आएंगे, अरे मैं आ रहा हूँ आप लोग को मारने जा रहा हूँ करके, ऐसा बता के आएंगे ये लोग? नहीं है, ये लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे हम नहीं जानते, मतलब वैसा साधारण मनुष्य के रूप में ये लोग आएंगे, बट ये नहीं मालूम ये लोग कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे, ये नहीं मालूम। सब कुछ खत्म होने के बाद तब पता चलता है कि हाँ अच्छा इन्होंने करवाया ये काम। वैसे ही जब ये गलत शिक्षक लोग जब कलीसिया का अंदर बैठते हैं, शुरुआत में हम लोग को पता नहीं चलता ये गलत शिक्षक है, ये झूठे शिक्षक है, ये अधर्मी है, इसके जीवन में पाप भरा हुआ है, हम लोग को पता नहीं चलता। इसलिए यहूदा इन लोग को याद दिला रहे हैं, सावधान रहो। 8 पद से लेकर 16 पद अगर आप ध्यान से सुनते हैं, लगता है कि ये लोग परमेश्वर के बारे में सुन चुका है, परमेश्वर के वचन के बारे में सुन चुका है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन चुका है, शुभ संदेश के बारे में 100 बार सुन चुके हैं ये लोग। ये ऐसा लोग हैं, पर इन लोग के पास कोई आशा नहीं है। एक दिन वे लोग नरक जाएंगे, एक दिन वे लोग नरक जाएंगे। 8 पद से लेकर 10 पद तक देखेंगे, 3 बातें बार 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 लेखक दोहरा रहे हैं। पहली बात क्या है? ये लोग चरित्रहीन। इन लोग की जो गुण है ना, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, बस एक बात इस पूरा 8 पद से लेकर 16 पद तक मैं कहूँगा, अधर्मियों का स्वभाव 8 पद से लेकर 16 पद तक हम लोग साफ साफ देखेंगे अधर्मियों का स्वभाव क्या है। 3 बात, एक तो ये लोग चरित्रहीन, अपना चरित्र के बारे में इन लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, अनैतिक, व्यभिचारी, भ्रष्ट लोग। और दूसरा बात क्या है? ये लोग चाहे प्रभु यीशु मसीह का अधीनता में नहीं रहना मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को नहीं मानते हैं ये लोग। ये तो कहते हैं हाँ प्रभु मेरा उद्धार करता है, बट प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को नहीं मानते हैं। और दूसरा है, ये लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता को तिरस्कार कर देते हैं, ये लोग तिरस्कार कर देते हैं, नहीं तो तुच्छपन में बदल डालते हैं, ऐसा लोग हैं। सो 8 पद में अगर देखें तो फिर भी ये स्वप्नदर्शी है। कौन लोग? ये जो 4 पद में कह रहा है यहूदा, ये लोग छुपे से आग से हैं, जो गलत शिक्षक लोग हैं, स्वप्नदर्शी है। अभी बहन भी हमारे लिए यिर्मयाह का पुस्तक से जो अध्याय पढ़ी है, उधर भी उनका लक्ष्य क्या था, आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे, ये स्वप्नदर्शी के लोग का लक्ष्य ये है, लोग परमेश्वर का वचन को छोड़ दें, उस स्वप्नों के पीछे चलें। ये जो गलत शिक्षकों का जो उद्देश्य है ये है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वप्नों ऊपर ध्यान दें, उसके पीछे चलें, परमेश्वर का वचन को छोड़ दें, ये इनकी लक्ष्य है। अगर देखा जाएगा तो नया नियम में भी प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ेंगे, ताकि एक दिन ऐसा होगा करके हम प्रेरितों का काम देखेंगे, सचमुच में क्या योएल नबी ने ऐसा भविष्यवक्ता किया कि नहीं है? किया। अगर पीछे जाके देखेंगे तो 700-800 साल पहले भविष्यवक्ता किया, ऐसा होगा करके पवित्र आत्मा आएंगे, आके लोगों को हृदय को खोल देंगे, अब लोग प्रभु के पीछे चलेंगे करके, बट ये जो स्वप्नदर्शी हैं, इनके पास ऐसा कोई वचन का आधार पर कोई इनका स्वप्न है नहीं है। ये लोग परमेश्वर का वचन को तिरस्कार करेंगे, परमेश्वर का अधिकार को तिरस्कार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों तिरस्कार करेंगे? क्योंकि वो अपना इच्छा पूरी करने के लिए लोग उनका पीछे चले। वैसा भी हम लोग वैसा देखते हैं आज भी, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, अरे भैया कोई हमको फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि अच्छा मेरे को रात में ये सपना आया, आप ऐसा ऐसा करिए और हमको 500 रुपये भेजिए, ये सचमुच में आपके जीवन में होगा। मेहरबानी से ऐसा लोगों को पीछे मत चलिएगा। अगर यदि ऐसा कहते हैं कोई, अरे मेरे को ऐसा स्वप्न आया करके, बोलिए वचन में कहाँ पर लिखा है, आप हमको वचन से समझा दीजिए। ये लोग ऐसा हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो स्वप्नदर्शी लोग उसी प्रकार शरीर को अशुद्ध करते हैं, ये लोग अपना शरीर को अशुद्ध करते हैं। ये स्वप्न में पहले भी बताएं, ये लोग कैसे लोग हैं? व्यभिचारी लोग हैं। अगर कोई पाप में भी फंसेंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब परमेश्वर इस जीवन दिए, शरीर को भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर चिंता करता है हम उसको अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। ये लोग अपना इच्छा पूरी करने के लिए, शरीर का इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग शरीर को अशुद्ध करते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, चाहे वो कलीसिया में है। अगर कलीसिया के लोग जाके उन लोग को बताएंगे भैया आप पाप कर रहे हैं, आप पाप छोड़िए, ये लोग क्या समझते हैं? अरे ये लोग क्या हमको बताएंगे, हम आगे देखेंगे, ये लोग क्या हमको बताएंगे, पाप तो अच्छा लग रहा मेरे को, बट पाप में फंसते जाएंगे। कभी भी ऐसा लोगों के अंदर कभी भी जो प्रभु का आप काम होना चाहिए हुआ नहीं है। अगर प्रभु का काम होता है वो नया हृदय देता है, परमेश्वर नया हृदय देगा और दिन प्रतिदिन हम पवित्रता में बढ़ते जाएंगे और पाप से दूर भागते जाएंगे। बट वेल ये लोग कैसा है, जो गलत शिक्षक लोग, ये अधर्मी लोग, ये लोग पाप से बहुत प्रेम करते हैं ये लोग। क्यों? मतलब दूसरी मत ये अधिकार को, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं ये लोग। इसका मतलब क्या हुआ? वे लोग, हम कहते हैं ना प्रभु महान है, हम प्रभु का पीछे चलेंगे, प्रभु उद्धार करता है, हम मेरे पापों से प्रभु ने बचा लिया। हम तो ये बातें बार बार हम कहते हैं, कम से कम कितना बार ये बात को सुनते हैं हम लोग, ये अच्छा लगता है क्योंकि प्रभु उद्धार करता है, पापों से छुटकारा दिलाता है। बट ये बात आती है, ये प्रभु सामर्थ परमेश्वर है, वो प्रभुता करता है, वो सबके ऊपर नियंत्रण करता परमेश्वर। ये जब ऐसा है तो संपूर्ण दिल से सब कुछ से हम प्रभु का पीछे चलना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ प्रभु मेरा उद्धार करता है ये काफी है, पर प्रभु महान भी है, प्रभु नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि सिर्फ हम प्रभु को सिर्फ उद्धार करता करके सीमित नहीं करेंगे, वो चाहता है कि हम संपूर्ण दिल से, पूरा तन मन सब कुछ से हम प्रभु के पीछे चलें। जो कोई हम निर्णय लेते हैं, क्या हम सचमुच में सोचते हैं कि ये प्रभु का ही ओर से है? बट ये लोग प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ये लोग संपूर्ण रीति से प्रभु का पीछे नहीं चलेंगे ये लोग, ये ऐसा लोग हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है, इनको वचन से लेना देना कोई है नहीं है। हमेशा मेरा इच्छा पूरी हो जाए, मेरा इच्छा, मेरा स्वप्न पूरी हो जाए, मेरा स्वप्न पूरी हो जाए। वैसे ही आठ नौ पद में हम लोग देखेंगे, जिधर ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग जो अधर्मी लोग, जो स्वप्नदर्शी लोग के बात कर रहे हैं, ये लोग अपना शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। आगे देखेंगे यहूदा ने एक उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखेल ने जब मूसा का शाव के बारे में शैतान के साथ वाद विलाप किया, है ना? कितना लोग इस विषय के बारे में बाइबल में पढ़े हैं आप लोग? जब प्रधान स्वर्गदूत मिखेल ने शैतान के साथ वाद विवाद किया था ना मूसा का शाव के बारे में, कोई पढ़े हैं आप लोग? पुराने में कई हैं। अगर व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे उसमें इतना तक लिखा हुआ है मूसा का मृत्यु हो गया, उसके बाद ये नहीं मालूम उसका खबर कहाँ पर है, उसको कहाँ दफना दिया गया ये नहीं मालूम। पर अगर हम लोग पूछेंगे कि क्या सचमुच में, अच्छा पुराने नियम में तो ये बात तो है ही नहीं है, तो नए नियम में कैसे पहुँचे हम लोग, प्रश्न है कि नहीं मन में? तो इसको सचमुच में ये वचन करके, पवित्र वचन करके मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कोई प्रश्न है? ध्यान दीजिएगा, सारे पूरा बाइबल पूरा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अगुवाई किया, लोग ये पूरा बाइबल को लिखा है, अलग अलग लोग अलग अलग समय पे परमेश्वर को वचन को लिखा है। बट जरूर यहूदा उस समय बहुत यहूदी किताब था उस समय, इवन आज भी है, मूसा के बारे में किताब है, आगे चल के हनोक के बारे में भी, वो भी किताब देखेंगे हम लोग, आज भी कुछ जगह वो किताब है। इसलिए हम लोग मानते हैं सचमुच में ये दोनों के बीच में मिखेल और शैतान के बीच में वाद विवाद हुआ था पहले। अब ये नहीं मालूम क्यों शैतान मूसा का सांप के बारे में पूछ रहा, बट हो सकता है कि परमेश्वर ये कि ऐसा ना करें। जब इसराइल मूसा ने कई साल उन लोग को अगुवाई किया बंधुओं से छुड़ाने में, उनको उन लोग के साथ बहुत समय व्यतीत किया, तो हो सकता है ये लोग मूसा का भी एक मूर्ति बना के उनको आराधना करें। सो परमेश्वर इसलिए मिखेल को जिम्मेदारी दिया, स्वर्गदूत मिखेल को जिम्मेदारी दिया, आप ये सारे काम कर लो करके। और ये भी इतिहास में कई किताबों में विशेष रीति से मूसा के बारे में एक किताब लिख चुकी है, तो उसमें लिखा है इस बात को। मेन बात ये है, स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को अधिकार दिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो पिता ने कहा वैसे ही पुत्र किया, आज्ञा को माना है, पिता का आज्ञा को माना, वैसे ही स्वर्गदूत भी इतना अधिकार होने के नाते ये नहीं कहा कि तुम दुष्ट हो इधर से चले जाओ करके, वो ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। अपने हाथ में अधिकार नहीं लिया, परंतु इन्होंने अधिकार, वो जो अनंत काल की दंड है ना, वो किसके हाथ में छोड़ा, वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ा है, छोड़ के बोला कि प्रभु तुझे डांटे। तो वैसे ही हम लोग आगे 13 पद और 10 पद में जल्दी से हम लोग देखेंगे समय के अनुसार। बट ये लोग जो गलत शिक्षक लोग हैं, दूसरों इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी दूसरा लोग को निंदा करते हैं ये लोग, इनकी जीवन ऐसा है। अगर कोई समझ में नहीं आता उस बात को समझेंगे नहीं है, बट दूसरों को निंदा करते हैं ये लोग। 11-13 तक 3 उदाहरण दिया, किस किस का, केन के बारे में लिखा गया, बलाम के बारे में लिखा गया और खोरा के बारे में लिखा गया। ये तीनों भी वैसा उदाहरण, एक तो परमेश्वर के पीछे नहीं चला, केन परमेश्वर का अनाचारी किया और परमेश्वर का पीछे नहीं चला है, और दूसरा बलाम है, वो दूसरा को प्रोत्साहन किया तुम पाप करो, और तीसरा खोरा भी परमेश्वर के प्रति विरुद्ध किया। एक करके हम लोग देखेंगे। पहले केन के बारे में, आप लोग केन का स्टोरी तो सुना होगा, आदम और हवा के द्वारा केन का फायदा हुआ और उसके बाद अबील का फायदा हुआ। सो केन भी परमेश्वर के पास जो कुछ भी वो लेके गया बलिदान चढ़ाया, और वैसा अबील भी बलिदान चढ़ाया। अबील का बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया और केन का स्वीकार नहीं किया, और ये बहुत गुस्सा होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना भाई को मार डाला। सो उस समय भी मतलब शुरुआत उधर से हुआ, ये जो गलत शिक्षक नहीं तो जो लोग परमेश्वर का बात को नहीं मानते हैं, शुरुआत उधर से हुआ केन के साथ। उस समय से लेकर धीरे धीरे वो सब बढ़ते गया, और हिब्रानियों 11 अध्याय भी हम लोग देखेंगे, विश्वास से ही अबिल ने परमेश्वर के लिए केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। अगर इब्रानियों 11 अध्याय 4 पद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अबिल केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया करके, कैसा परमेश्वर को बात को मानते हुए वो परमेश्वर के पीछे संपूर्ण दिल से वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया केन। उसके बाद स्टोरी खत्म होता है, क्योंकि केन को भी परमेश्वर के साथ वो कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे को ऐसा दंड दिया, अगर मैं कोई बाहर कहीं जाएंगे तो लोग मेरे को मार डालेंगे, तो परमेश्वर ने उसके सिर के ऊपर एक चिन्ह डालेंगे, वो कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ कोई तुमको नहीं मार डालेंगे, अगर मार डालेंगे कम से कम कितना अधिक तुमसे बढ़कर उन लोग को झेलना पड़ेगा करके। सो ये एक कहानी, ये ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर का बात को नहीं माना मतलब संपूर्ण दिल से परमेश्वर के पीछे केन चला नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। दूसरा बिलाम के बारे में लिखा है, तो उधर भी बिलाम का कहानी भी याद होगा, अगर घर जाके आप लोग ये सारे पद पढ़ेंगे, गिनती 22 अध्याय 23 अध्याय 24 अध्याय 25 अध्याय आप अगर आप लोग पढ़ेंगे, बिलाम के बारे में बहुत साफ रीति से लिखा गया है, साफ रीति से लिखा गया है। सो ये बिलाम है कौन? ये भी एक परमेश्वर के जन और भविष्यवाणी करने वाला है ना, भविष्यवाणी करने वाला है। अगर यदि यदि अगर स्टोरी आप कहानी पढ़िएगा, यदि आप उनको पैसा देंगे वो भविष्यवाणी कर देगा वो, है ना। सबसे उस समय मतलब जितना तक मैं पढ़ा हूँ, मैं उस समय वो इतना ज़्यादा पैसा लोगों से लेता था वो, ताकि ऐसा भविष्यवाणी करेगा वो लोगों के अंदर पूरा हो जाएगा करके। क्यों? क्योंकि उस समय भी इवन आज के ज़माने में बहुत लोग ऐसा इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, भैया आप उन पर श्राप कर दीजिए ताकि उसका जीवन नाश हो जाए करके। वैसा ही बलाक, जब लगभग इसराइल लोग मतलब उस जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया उस देश का लगभग करीब पहुंच रहे हैं, बट ये बालक चाहता है कि इन लोग के ऊपर श्राप हो जाए, है ना, ये लोग नाश हो जाए। इसलिए ये कहते हैं, इसको बुलाते हैं, किसको बुलाता है, बिलाम को बुलाता है, बुला के तुम इस पर श्राप दे दो ताकि ये सब लोग नाश हो जाएंगे करके। बट इसका कहीं ना कहीं अंदर से परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का डर था। तो ये क्या करता है, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे, अंदर ये भी है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हमको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, मोहब्बत स्त्री लोग के पास जाके इन लोग से बोलते हैं कि जाओ तुम जाके इन लोग के साथ व्यभिचार करो। वैसे ही इसराइल लोग उनके साथ व्यभिचार करता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो इधर देखिए, पहले कैन पूरा दिल से परमेश्वर के पीछे नहीं चला, अभी जो बिलाम है, बिलाम ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, जाओ पाप करो ऐसा, क्योंकि ये चरित्रहीन है, चरित्रहीन, इनका कोई चरित्र है नहीं है, चरित्र है नहीं है। कोरा के बारे में, कोरा भी वैसे, वो भी परमेश्वर का बात को नहीं सुना है, अंततः वो नाश हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक जन पुराना नियम का इतना उदाहरण दिया, मैं क्या बताऊं, ताकि हम लोग सच्चा दिल से परमेश्वर के पीछे चलें। ये नहीं कि एक कदम परमेश्वर के पीछे चलेंगे और थोड़ी देर के बाद हमारा मन मर्जी करेंगे। कोरा भी परमेश्वर के साथ विद्रोह किया। ये भी गिनती 16 अध्याय आप लोग पढ़ेंगे पूरा कोरा के बारे में। आप लोग, कोरा मतलब एक लेवी था, उसका काम क्या था, वो मंदिर का देखभाल करें, जो लोग मंदिर के अंदर आते हैं उनकी जो आराधना का ये सब उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी था। बट ये हुआ गिनती 16 अध्याय 3 पद में जब देखेंगे, तो ये कहते हैं कि अरे इस कलीसिया में सब लोग पवित्र हैं। कम से कम 2-3 बार वो दोहराता है, हमको किसी अगुवे का जरूरत तो है नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया में सब लोग पवित्र हैं। कोरा ऐसा करके परमेश्वर का प्रति विरुद्ध करता है और मूसा का बात सुनने का तैयार नहीं था, और बार बार यही दोहराता है कि मनुष्य कितना मतलब अपने आप को परमेश्वर जैसा समझते हैं, जैसा आदम और हव्वा शुरुआत में, उन लोग की इच्छा क्या था, हम भी परमेश्वर के जैसा बन जाए, हमको परमेश्वर का जरूरत है नहीं है। वैसे ही इधर खोरा भी कह रहा है कि इस कलीसिया में, है ना, इस मंडली में सब लोग पवित्र हैं, आपका जरूरत नहीं है। ये गुण क्यों ये बार बार ये याद दिला रहे हैं, ये जो गलत शिक्षक लोग हैं। अगर 8 पद में हम लोग देखते हैं, वो लोग क्या करते थे, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वैसे ही इसलिए उदाहरण दिया, 3 उदाहरण, केन का उदाहरण दिया, बिलाम का उदाहरण दिया और कोरा का उदाहरण दिया। उदाहरण देख के कह रहे हैं कि ये चरित्रहीन है, ये किसी परमेश्वर का अधिकार के नीचे अधीनता में रहते हुए ये अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। और वैसा कोरा भी परमेश्वर की विरुद्ध किया, वैसा दो तीन लोग वैसा किया। फिर क्या हुआ, अंततः उस जमीन खुल गया था और उसके बाद सब लोग उसके अंदर फंस के सब लोग मर चुके हैं। परमेश्वर का न्याय को देख रहे हैं आप लोग, अगर परमेश्वर के पीछे हम लोग सच्चा दिल से अगर हम लोग नहीं चलेंगे, एक दिन अनंत स्वर्ग नहीं है, अनंत नरक को सामना करना पड़ेगा हम लोग। यदि आप कहते हैं, यदि आप कहते हैं, कई दो तीन हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं, अगर एक दूसरे लोग अच्छी रीति से बढ़िया से परमेश्वर के वचन के साथ अगर एक दूसरों को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरों को प्रभावित करते हैं, कितना अद्भुत बात होता है ना। अगर नहीं है, अगर एक दूसरे को भैया पाप अच्छा है, आप पाप में फंसते जाइए, पाप से प्रेम करिए, वो कैसा रहेगा? हम लोगों को किस तरफ आगे बढ़ा रहे हैं? अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन यदि अगर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आप लोग जो परमेश्वर ने दया दिखाया हमारे ऊपर, हम दया की लायक नहीं था, हम लोग दया की लायक नहीं था, जो परमेश्वर ने दया दिखाया वो हम दिखाएंगे, हमारा जीवन के द्वारा दिखेगा सचमुच में हम विश्वासी है कि नहीं है कर। अगर ये 8 पद से लेकर 8, 9, 10 ये सारे पदों से लेकर देखें तो क्या दिख रहा है? लोगों का अंदर घमंड, ईर्ष्या, पाप, यही सारे, ये लोग परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ये लोग जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते। ये सारे बात हम लोग को फिर 12 पद से लेकर 13 पद तक अलग 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 उदाहरण है ना। कैसा उदाहरण? ये मनुष्य, ध्यान से आप देखिएगा, मतलब जो प्रकृति का उदाहरण दिया है ना, प्रकृति का, ये मनुष्य समुद्र तले की छिपे चट्टान है, ये तुम्हारा प्रीति भोजन में है ना हमेशा शामिल रहते हैं। क्यों मतलब ऐसा ऐसा प्रकृति के बारे में फिर उदाहरण दे रहा? ये सब अधर्मियों का स्वभाव है। समुद्र के, कभी आप लोग समुद्र, बहुत लोग समुद्र देखने गया होगा ना, है ना, ये लोग छिपे चट्टान है। जो जो पत्थर होता ना समुद्र के अंदर, वो बाहर से दिखेगा नहीं है, वो बाहर से दिखेगा नहीं है, वो छिपे चट्टान जैसा, मतलब कभी कभी बाहर दिखेगा, कभी कभी अंदर ही रहेगा, पर वो नाव के लिए बहुत खतरा है, वो नाव के लिए बहुत खतरा है। इसलिए लेखक यहूदा ऐसे, ये जो गलत शिक्षक लोग, वैसे ही कलीसिया के लिए खतरा है, इसलिए वो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। सिर्फ वही नहीं है, निर्जल बादल है। सो उस समय जब इज़राइल लोग बारिश के ऊपर बहुत निर्भर करते थे, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगा नहीं तो ये लोग मुश्किल हो जाएगा उन लोग के लिए, जो कुछ भी खेती बाड़ी करते हैं बारिश तो होना ही होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा बादल हैं जब हम लोग देखते हैं तो अच्छा अभी बारिश होगा, बट वो कुछ समय के लिए रहेगा वो बादल, उसके बाद चले जाएगा। लगता है कि अरे वो बादल देखो अभी तो पानी गिरेगा, पर वैसा नहीं है। तो ये बादल कुछ समय के लिए है और उसके बाद वो कुछ भी पानी नहीं बरसेगा उसके साथ। सो ऐसा उदाहरण दे रहा, और सिर्फ उतना ही नहीं है, और पेड़ के बारे में पतझड़ की फलहीन वृक्ष है। ये मतलब ऐसा क्यों उदाहरण दे रहा है ऐसा? और आप अगर आप लोग नया नियम में देखेंगे मत्ती 15 अध्याय 13 पद अगर आप पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है जो पौधा पिता परमेश्वर ने नहीं बोया उसको पूरा निकाल जाए। इसका मतलब क्या है? जब तक परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारा जीवन के अंदर काम नहीं किया, हमको नया जन्म नहीं दिया, हम लोग भी वैसे ही हैं, इस पेड़ों के समान, इस वृक्ष के समान। लगता है कि पेड़ तो बढ़ रहे हैं, बट उसका कोई नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट नहीं है। लगता है कि वो जमीन में है, ये बढ़ेगा, ये फल देगा, बट नहीं है, क्योंकि ऐसा लोग जो गलत शिक्षक लोग हैं, परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध है नहीं है। उसका जीवन में कभी वो जो नया जन्म का जो अनुभव है ना, वो कभी हुआ नहीं है। अगर होता हम लोग कैसे चलेंगे? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर ने जो कलीसिया दिया है उसको अनदेखा नहीं करेंगे, और जो परमेश्वर ने जो अगुए दिया है और नहीं तो कलीसिया के लोग दिया है, उसके छुप छुप के हम लोग पाप नहीं करेंगे। इन लोग का अगर हमारा जीवन में भी अगर जो प्रभु जिस रीति से काम करना चाहिए, अगर वो काम हमारा जीवन में हुआ नहीं, तो हमारा अंदर कभी इच्छा नहीं रहेगा परमेश्वर के लिए। वैसे ये जो गलत शिक्षक लोग हैं ना, अपना शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वैसे ही लोग जैसा कैन का समान है, कोरह के समान है, बिलाम के समान है, हम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं है, और उसके बाद समुद्र का भी उदाहरण दिया, लहरें, जैसा लहरें आप लोग जैसा जो देखे तो जो कुछ कुछ लहरें ऐसा लहरें होते हैं वो अच्छा लहरें नहीं होते, ये लहरें कूड़े को और बाहर निकाल के लेके आते हैं और सब जगह फैलाते हैं। सो ये भी अधर्मी, इन लोग का एक गुण है कूड़े फैलाने का। सिर्फ ये नहीं कि वो कलीसिया में आके चले जाएंगे, अच्छा मैं मेरे को ये सपना है, आप क्या सोचते हैं, आप उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर यदि वो वचन का आधार पर, ज़रूर हम उसको वचन के अनुसार हम लोग उसकी तुलना करेंगे सचमुच में ये वचन में है कि नहीं। और सिर्फ उतना नहीं है, डमेडोल तारे हैं, कभी ऐसा तारों को देखा आपने, पर ये क्यों लिखा है इधर डमेडोल तारा है करके? सर ऐसा तारा नहीं है, डमेडोल तारा मतलब वो घूम फिर के आएंगे उसके बाद ऐसा आकाश में रह जाएंगे करके, ऐसा नहीं है। ये जो डमेडोल तारे की बात कर रहे हैं, ये जो तारे हैं बस एक जगह से दूसरी जगह बस कुछ 2-3 सेकंड के लिए ये तारे आते हैं ऐसा, उसके बाद गायब हो जाते हैं। इधर लेकर यहूदा क्यों लिख रहा है, ये जो गलत शिक्षक लोग अधर्मी लोग वैसे ही है, ये डमेडोल तारा की जैसा कुछ समय आएंगे और अनंत अंधकार में ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा जगह ठहराया जो अंधकार की जीवन, वो लोग हमेशा के लिए वो लोग जिएंगे करके। सिर्फ उतना नहीं, आखिरी 14 पद से जल्दी से हम लोग 16 पद तक देखेंगे। तो 16 पद आप जल्दी से अगर देखें तो ये 16 पद, ये जो अधर्मी लोग, जो गलत शिक्षक लोग, ये कुड़कुड़ाने वाले हैं, दोष देने वाले हैं, ठीक है, कुड़कुड़ाते हैं, दोष देते हैं। और सिर्फ उतना नहीं है, अपने वासनाओं को अनुसार चलने वाला है, घमंड भरी बातें करते हैं ये लोग। और सिर्फ उतना ही नहीं है, ये लोगों के साथ चापलूसी करते हैं, करने वाला है। ये जो गलत शिक्षक का स्वभाव, बहुत से बातें यहूदा ने लिखा गलत शिक्षक के बारे में, स्वभाव के बारे में, उनकी जो चरित्र के बारे में, गलत शिक्षाओं का चरित्र ऐसा है। अगर 14 पद हम लोग देखेंगे, हनुक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी था, इनके बारे में नबुवत की। क्या नबुवत किया? एक दिन परमेश्वर फिर वापस स्वर्गदूत के साथ फिर वापस आएगा, क्या करने, न्याय करने। कितना बार सिर्फ अगर 15 पद में कितना बार लिखा भक्तिहीन। कम से कम 3 बार यहूदा जो परमेश्वर वापस आएगा, न्याय करेगा, किसका न्याय करेगा, जो अधर्मियों का न्याय करेगा, जो भक्तिहीनों का न्याय करेगा। यही बात हनुक ने बहुत पहले, और हनुक का भी अगर पुराने नियम में अगर देखे जाएगा तो ये जो भविष्यवाणी के बारे में हम लोग देखने को नहीं मिलता है, बट ऐसा पुराने नियम में दो जन हैं, एक तो हनुक है और दूसरा है एलिया, वो लोग चलते फिरते परमेश्वर उसको ऊपर ले गया। उत्पत्ति 5 पद और 24 पद अगर देखेंगे, हनुक तो परमेश्वर का साथ साथ चलता था, उसे परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। मतलब ऐसा हो गया इन लोग के, ये लोग चलते फिरते स्वर्ग चला गया। ऐसा ही अनुक, फिर भी हम लोग इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि यहूदा ने इस बातों को लिखा, और क्योंकि ये अपना मनमर्जी से नहीं लिखा, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया, और इसलिए इन बातों को यहूदा ने लिखा। किस बातों के बारे में बार बार लिख रहा है? ये जो भक्तिहीन है, अधर्मी है, इनकी एक दिन न्याय होगा। इस न्याय से कैसे हम लोग बच सकते हैं? कई बातें हम लोग देख चुके हैं, 5 पद से लेकर 16 पद तक हम अधर्मियों का स्वभाव को देख, ये बात तो हम लोग तो नहीं जानते ना, जो कुड़कुड़ाने वाला बात है, जो चापलूसी करने वाला बात है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल सुना नहीं ये बात कभी, है कि नहीं, कभी किया हम लोग? बहुत अच्छी बात अगर किया नहीं तो। फिर भी मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, जो मिकेल जो स्वर्गदूत है ना, उसका नाम का जो अर्थ है, परमेश्वर जैसा कौन है, परमेश्वर जैसा, सो परमेश्वर के जैसा कोई है नहीं। पहले था आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति करता था, है ना। पवित्र परमेश्वर को ये लोग आमने सामने बैठकर परमेश्वर के साथ बातचीत करता था, संगति करता था। बट अभी जितना यहूदा में हम लोग जितना तक समझे हैं, इनका कोई आशा है? जो चरित्रहीन लोग हैं, जो व्यभिचार लोग हैं, जो भक्तिहीन हैं, जो अधर्मी लोग हैं, क्या इन लोग के पास कोई आशा है? अगर ऐसे, इसलिए मैंने पहले बोला परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर। अगर यदि हम नम्रता के साथ अपना पापों को मान लेते हैं, पापों के मान ले मतलब प्रभु मैंने आपके प्रति विरोध किया, जैसा कैन के समान, जैसा कोरा के समान, जैसा बिलाम के समान, मेरे पाप को क्षमा करिए। अगर यदि हम सच्चा दिल से परमेश्वर से हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर हमारा जितना पाप हजारों पाप क्षमा करने का तैयार है। और वैसे देखिए रोमियो 3:10, कोई भी मनुष्य एक भी धर्मी नहीं था, कोई भी एक भी मनुष्य धर्मी नहीं था, ऐसा हमारा स्थिति था। हो सकता है ऐसा हम बहुत लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है आप परमेश्वर के पीछे सच्चे दिल से नहीं चल रहे। जिस रीति से परमेश्वर चाहता है वैसा हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। और आपका मन में प्रश्न भी हो सकते हैं, क्या सचमुच में इस अनंत आग से हम कैसे बचेंगे? उसका एक ही रास्ता है, जो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बन गया। वो आकर हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप करवाने के लिए वो अपना जान दे दिया, और सिर्फ उस क्रूस पर जान ही नहीं दिया, तीसरा दिन वो जी उठा है और अनंत आशा दिया, ताकि एक दिन वो वापस आएगा, एक दिन वो न्याय करेगा। क्या सचमुच में उस न्याय का सामना करने के लिए हम और आप तैयार हैं? अगर उस दिन अगर आप डरना नहीं चाहते हैं, आज ही से उसका तैयारी करना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं है तो हम हमारा पाप लेकर एक तो नर्क जाएंगे, दूसरा स्वर्ग जाएंगे। और जो पाप का जो बोझ है ना, वो बहुत ज्यादा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो बोझ है, पाप का बोझ है, वो उसको दे दो, वो लेने का तैयार है। जब वो महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हमारा पाप का बोझ लेने का तैयार है, तो देने में क्या परेशानी? मुश्किल है, हम अपना पाप का बोझ को लेकर हम चल नहीं सकते। चलेंगे भी जैसा ये लोग, जो भक्तिहीन लोग, जो अधर्मी लोग, इनकी जैसा कुछ समय हम लोग चलेंगे, उसके बाद परमेश्वर से बिल्कुल हट जाएंगे। इसलिए इन बातों को यहूदा याद दिला रहे हैं, यत्नपूर्वक इस विश्वास के लिए संघर्ष करते रहो, अंत तक संघर्ष करते रहो। नहीं है तो जैसा इज़राइल लोग के साथ, कुछ लोग को परमेश्वर ने बचाया और कुछ लोग को नाश कर दिया, जैसा स्वर्गदूत उस भीषण का दिन के लिए, अंत का न्याय के लिए अंधकार में रखा गया, सदोम और अमोरा, उनका क्या हुआ? वो पराई शरीर का लालचा के पीछे पड़ने लगे, परमेश्वर ने नाश कर दिया। ये जो गलत से, अगर सचमुच में प्रभु के पीछे हम लोग नहीं चलते, हमारा शरीर को अशुद्ध करते हैं हम अलग अलग कामों के द्वारा। इसलिए हम केन का समान ना बने, बिलाम का समान ना बने, कोरा के समान ना बने, बट सच्चा दिल से परमेश्वर के पीछे हम चलें, ताकि एक दिन हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए उस स्वर्ग में रहें। इसलिए यहूदा इन बातों को याद दिला, ताकि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें, इस साल का एक लक्ष्य बनाइए, वचन पढ़ने का, वचन समझने का, सच्चा दिल से। यदि हो सकता है, हम सब लोग पाप से संघर्ष करते हैं, पाप से लड़ते हैं, अच्छा रहेगा किसी को बताइए, हम ये पाप से संघर्ष कर रहे हैं, भैया आप हमारा सहायता करिए। किसी से भी, जो अगुए लोग हैं उन लोग से पूछिए, जो बहनों से पूछिए, इस पाप से संघर्ष कर रहा हूँ मैं, सहायता करिए। हम सबसे बढ़कर इतना कर सकते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब तक हमारा अंदर वचन का रुचि नहीं होगा, हम पवित्रता में नहीं बढ़ पाएंगे। और वैसे ही कलीसिया के लिए भी हमारा इच्छा ठीक से नहीं होगी। नाम के वास्ते हम लोग आएंगे, सही शिक्षा का सही प्रतिफल है पवित्र जीवन है। अगर उसी में अगर हम लोग नहीं बढ़ रहे, हमारा अंदर कुछ गलत है, कहीं ना कहीं हम फंस रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रभु सहायता, प्रभु दयालु है, प्रभु दयालु है, प्रभु सहायता करता है पाप से लड़ने में, उस पुराना जीवन को छोड़कर नया जीवन व्यतीत करने में प्रभु सहायता करता है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।